नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन करेंगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा, विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और दिल्ली संपत्ति कर माफी योजना सुनियों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी की गई। अब समाचार विस्तार से। देश भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की है कि ये वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए लोगों से कहा कि सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, उन्नति करें और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें।
नववर्ष आपके जीवन में नया संकल्प, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। नववर्ष पर हम सामूहिक मिलकर देश और प्रदेश को नए विकास के आयाम पहुंचाने में, सामाजिक जनकल्याण में और किस तरीके से हमारे योगदान से हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें।
राजधानी में 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में कल से शुरू होगा। दिल्ली शब्दोत्सव के पहले आयोजन के माध्यम से दिल्ली सरकार इसे देश की सबसे बड़े साहित्य और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में स्थापित करना चाहती है। शब्दोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी।
दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 40 से अधिक पुस्तकों का विमोचन होगा। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और कवि सम्मेलन होंगे। कार्यक्रम में दिल्ली NCR के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्रों के हिस्सा लेने की भी संभावना है। कार्यक्रम में आम लोगों के लिए पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। दिल्ली शब्दोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इस उत्सव में सभी के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नववर्ष के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। श्री सक्सेना ने कहा कि ये नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, नई ऊर्जा और सफलताएं लेकर आएगा। उन्होंने आग्रह किया कि सभी मिलकर दिल्ली को सशक्त बनाएं और भारत को प्रगति तथा विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए विकास और समृद्धि लेकर आए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आने वाला ये साल दिल्ली के लिए समृद्धि, तरक्की और विकास लेके आएगा और हम सब मिलकर के अपनी दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली और एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और ये मुस्कुराहट दिल्ली के चेहरे पे हमेशा बनी रहे।
वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये प्रारूप डिजिटली जारी किए गए थे। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के ये विविध प्रारूप विभिन्न संगीत शैलियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इनका देश के नागरिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता सशक्त होगी।
वंदे मातरम वाज कंपोज्ड।
वंदे मातरम की रचना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर ये केवल एक गीत नहीं रहा बल्कि आजादी की लड़ाई का सशक्त प्रतीक बन गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं बल्कि एक नारे और अभिवादन के रूप में भी अपनाया। इसकी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम इसे सुनकर और भावार्थ समझकर स्वयं को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित कर सकते हैं।
लिसनिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि भारतवासियों ने वंदे मातरम को केवल गीत के रूप में नहीं बल्कि एक स्लोगन, एक अभिनंदन के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का 150वां वर्ष का उत्सव इसे सुनकर और इसके विभिन्न अंशों को समझकर राष्ट्र के प्रति स्वयं को पुनर्समर्पित करने का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में संगठन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में DRDO मुख्यालय का दौरा कर सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस करके भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO की सराहना की। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री ने DRDO से तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बिठाते हुए ऐसे उत्पाद विकसित करने का आह्वान किया जो बदलते समय में प्रासंगिक बने रहें। उन्होंने संगठन से नवाचार पर अपना ध्यान बनाए रखने और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने का आग्रह किया जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इस दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने रक्षा मंत्री को मौजूदा जारी अनुसंधान और विकास गतिविधियों, संगठन की उपलब्धियों, उद्योग, स्टार्टअप और 2026 के रोडमैप के बारे में जानकारी दी। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली विधानसभा में 3 जनवरी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत माता कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी होगा। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बीच श्री गुप्ता ने कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय में कार्य पूरे न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि जर्जर सीवर की लाइनें भी बदली जाएंगी और हर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, सीवर, पानी, सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 111 के रुपए की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा कीमत अब 1691 रुपए और 50 पैसे हो गई है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के संशोधित मूल्य आज से लागू हो गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 से 20 दिनों में इस ट्रेन को रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 16 कोच वाली ये स्लीपर ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये ट्रेन आरामदायक स्लीपर सीट, स्वचालित दरवाजे और आधुनिक शौचालय सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भोजन के साथ वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का किराया लगभग 2,300 रुपये, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के लिए 3,000 रुपये और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए 3,600 रुपये होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली वासियों के लिए संपत्ति कर माफी योजना सुनियो 2025-26 के अंतर्गत भुगतान करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। इस योजना के सभी नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि योजना के तहत गणना की गई मूल कर राशि पर 5% विलंब शुल्क लगेगा। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और संपत्ति कर का बकाया तुरंत चुकाएं ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने आज देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। इसे वाईफाई कॉलिंग सेवा के नाम से भी जाना जाता है। संचार मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा अब देश के सभी दूर संचार सर्किलों में BSNL के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। इससे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये ग्राहकों को वाईफाई नेटवर्क पर वॉइस कॉल और मैसेज करने तथा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इससे घरों, कार्यालयों, तहखानों और दूर दराज के स्थानों सहित कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले क्षेत्रों में भी स्पष्ट और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सेवा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI से दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21,63 करोड़ लेनदेन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार ये लेनदेन वार्षिक 20% बढ़कर लगभग 28,00,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष नवंबर में ये 87,721 करोड़ रुपए था। औसत दैनिक लेनदेन की संख्या अब बढ़ाकर 69,80,00,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में केवल 8 दिन ऐसे रहे जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से अधिक खराब की श्रेणी में थी और वर्ष 2018 के बाद से ये दूसरी बार सबसे कम दिन रही। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2025 में सभी लोगों के लगातार मिलकर किए गए प्रयासों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में और सुधार हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि इससे साफ है कि वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 89 दिन ऐसे रहे जब AQI 100 से या उससे कम था, जो सिर्फ कोविड वाले वर्ष 2020 से कम है। राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने निर्माणाधीन स्थलों पर 20 नई एंटी स्मॉग गन लगाने की योजना तैयार की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में DMRC ने बताया कि इनमें से कई पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि शेष 10 एंटी स्मॉग गन जल्द स्थापित किए जाएंगे। जिन स्टेशनों पर ये उपकरण लगाए गए हैं या लगने हैं, उनमें कश्मीरी गेट, समयपुर बादली, द्वारका सेक्टर 21, रजौरी गार्डन, आनंद विहार, पीरागढ़ी, अशोक विहार के अलावा मेट्रो भवन आदि शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर कोहरा छाया रहा और सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन करेंगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा, विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और दिल्ली संपत्ति कर माफी योजना सुनियो की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।